सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। हम सभी मिलके श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं। हम उनको देख नहीं पाते, ऐसा है, विग्रह के रूप में तो है, क्यों नहीं देख पाते। हम लोग देखते हैं, आपने देखा है, किसी ने देखा है। चैतन्य महाप्रभु पूछ रहे थे, मुझे दिखा सकते हो, मैं भगवान को देखना चाहता, दिखाओ मुझे जगन्नाथपुरी में। कई लोगों को रोक रोक के, रुको रुको रुको, तुमने देखा है, मुझे दिखा सकते हो, दिखाओ मुझे भगवान। तो एक चालाक व्यक्ति, बुद्धिमान भी, चैतन्य महाप्रभु को जगन्नाथ मंदिर में ले गया और कहा, अब देखना चाहते हो भगवान को, देखिए तो सही, कौन है, भगवान है। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का दर्शन करा के भगवान, भगवान का रूप भी भगवान है, भगवान का नाम भी भगवान है, भगवान की लीला भी भगवान है। भगवान की कथा ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम भगवत स्वरूप है, ऐसे भगवत स्वरूप भागवतम की हम लोग आराधना कर रहे हैं। प्रातः स्मरणीय, क्या प्रातः ही नहीं, सदैव स्मरणीय प्रभु का, प्रभु की आराधना हम नित्यम भागवत सेवया करके यहां कर रहे हैं। तो हुआ, वैसे मैं कहने जा रहा था कि जैसे प्रभु का बारंबार, प्रभु को बारंबार प्रणाम, उसी प्रकार आपका बारंबार यहां पर स्वागत है, पुनः पुनः स्वागत है प्रभु के दरबार में, राधा कुंज बिहारी के चरणों में। श्रीमद् भागवत कथा के शरण में, छत्र छाया में आपका स्वागत। कल के सत्र में हम लोग ये श्रीमद् भागवतम का छठवां स्कंध के पहले तीन अध्याय हम लोग इन सात सत्रों में, प्रातःकालीन सत्रों में संपन्न करेंगे, अध्ययन करेंगे इनका। तो कल हम लोग प्रथम अध्याय से प्रारंभ किए, इसके पहले नरक का भी एक रिकॉर्डिंग आपने सुना था, उसको सुन के कई सारे लोग इकट्ठे हो गए। ऐसा तो अनुभव नहीं, इस संसार का, इस पृथ्वी पर का वो अनुभव नहीं था। तो हुआ, लेकिन उस जगत का, उस नरक लोक में जो यातनाएं होती है, यम यातनाओं का वर्णन तो राजा परीक्षित सुन चुके थे, इसीलिए भक्त का हृदय है बहुत दुखी हुए, पर दुख दुखी। उनका तो कुछ संबंध नहीं था, नरक होगा तो होगा सही, उनसे क्या, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नहीं थी, उनको तो भगवान के धाम सीधे जाना ही था, तो भी वे चिंतित थे, दुखी थे, इसीलिए तो उन्होंने जिज्ञासा की, निवेदन किया फिर सुखदेव गोस्वामी जी के चरणों में, ऐसा कुछ उपाय बताइए ताकि इस नरक की जो गति है इससे मनुष्य बच सकते हैं। ऐसी जिज्ञासा करते ही जवाब में सुखदेव गोस्वामी, आप प्रायश्चित करो, प्रायश्चित करना चाहिए। तो राजा परीक्षित कहा, ना ना ना, कुंजर शौचवत, ये प्रायश्चित तो हाथी स्नान जैसा ही है। गुड बॉय, अच्छा विद्यार्थी हो तुम, पास हो गए। और हम लोग क्या किए थे कल? फेल हो गए। एक आत्मनिवेदन, थोड़ा ग्रेस पास, थोड़ा 35%। तो हुआ फिर सुखदेव गोस्वामी तप आदि की बातें की उन्होंने, लेकिन ये भी वैसा ही जैसे बांस को, उसके पेड़ को जलाते हैं या उसको काटते ट्रिमिंग करते हैं, लेकिन उसकी जड़ तो बनी रहती है, पुनः उगाता है जब वर्षा होगी, सिंचाई होगी, तो पाप की वासना तो बनी रहती ही है। प्रायश्चित के उपरांत भी ऐसे स्वयं ही सुखदेव गोस्वामी कहे, और कई उदाहरण दिए उन्होंने। और अंत में उपाय उन्होंने ये कहा कि केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणः, वासुदेव की भक्ति यही उपाय है। वो सिद्धांत को और भी आगे बढ़ाते, स्पष्ट करते हुए उन्होंने कृष्ण अर्पित प्राण की बात की। व्यक्ति को कृष्ण के चरणों में समर्पित होना चाहिए, और तत्पुरुष निषेवया, तत्पुरुष उनके पुरुष, भगवान के पुरुष, साधु पुरुष, संत महात्मा की सेवा करनी चाहिए। ये भी सिद्धांत, ये भी उपाय सुखदेव गोस्वामी सुनाए। वैसे उसके आगे तो कुछ कहने का बचता ही नहीं है। मामेकम शरणम व्रज, फिनिश्ड, और कुछ नहीं। फिर अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, आप केवल शरण तो लेके देखो, आप अपना फर्ज निभाओ, आप शरण में आ जाओ, फिर बॉल इज इन माय कोर्ट, फिर मेरा फर्ज शुरू होता है। मैं क्या करूंगा? आप शरण में आओगे तो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, सर्व पापेभ्यो मोक्षिष्यामि, मैं मोक्ष दूंगा आप सभी को। हम बहुत सारे, यहां कोई चिंता नहीं है, और बहुत सारे पाप, कोई समस्या नहीं है। सर्व पापेभ्यो मोक्षिष्यामि, अहम मोक्षिष्यामि त्वाम। और अंत में प्रभु ने कहा है, मा शुचः, डरो नहीं, या कोई संदेह नहीं रखो, शरण में आ जाओ बस। तो शरण में आना और प्रभु के भक्तों की सेवा, ये विधान, ये सिद्धांत सुखदेव गोस्वामी कहे। और उसके उपरांत और एक बात कहे हैं, सकृन मनः कृष्ण पदारविंदयो। और फिर ऐसा व्यक्ति एक बार सही कृष्ण पदारविंदयो, कृष्ण के पदारविंद, चरणारविंद का स्मरण करता है, उसमें प्रवेश करता है, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पांजरांतम। एक भक्त ने प्रार्थना की है, ये प्रभु क्या करो, कृष्ण त्वदीय आपके ही तो, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पांजरांतम अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस निवेशितम। वही बात सुखदेव गोस्वामी निवेशितम कहे हैं, प्रवेश तुम मेरे मानस राजहंस, मेरा मन जिसको मैं हंस कह रहे हैं, हंस राजहंस उसको प्रवेश करने दीजिए ना हे प्रभु। किसमें प्रवेश? आपके चरण कमल, आपके चरण कमल जैसे हैं और मेरा मन हंस जैसा है, ये जोड़ी अच्छी है ना। जहां कमल खिलते हैं वहां कौन होते हैं? हंस का विहार होता है। तो ये राजा कुलशेखर की प्रार्थना है, वो कहते हैं कि हे कृष्ण आपके चरण कमल अद्यैव मे विशत उनमें प्रवेश होने दो, मानस राज मेरे मन का प्रवेश अद्यैव मे अद्यैव आज ही अभी अभी। प्राण प्रयान समय कफवात पित्तै कंठावरोधन विधो स्मरणम कुतस्ते। कहते ये समय से यही बातें आगे भी कही जाएगी जो आज का विषय हम आगे बढ़ाएंगे इस कथा को। अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस, और प्राण प्रयाण समय, जब प्राण का प्रयाण प्रस्थान का समय आएगा, प्राण प्रयाण समय कफ वात पित्तई, कफ कफ की मात्रा बढ़ेगी, कंठी घुर घुरायते, भागवत मिले कंठ से आवाज आए कैसा घुर घुर, कंठी घुर घुर घुरायते। ऐसे स्थिति में आपका स्मरण कैसे संभव होगा प्रभु? प्राण प्रयाण समय कफवात पित्त कंठावरोधन, अवरोधन बंधी होगा, स्मरणम कुतस्ते, स्मरण कहां से होगा। इसीलिए प्रभु अभी अभी आज ही अभी मेरे मन को आपके चरण कमलों में प्रवेश होने दो मेरे मन का। तो इस विचार का कोई व्यक्ति एक समय भी इस प्रकार का विचार करता है, सुखदेव गोस्वामी के सकृत एक एक बार, केवल एक बार भी ऐसा विचार मन में आता है, भगवान के चरणों का मन में स्मरण करते हुए, तो हो गया, बस हो गई छुट्टी। स्वप्ने पी, स्वप्न में भी वो तद भटान, वो यमदूत जो है, जो सब समय अपने हाथ में पाश रस्सी डोरी लेके चलते ही रहते हैं, उनका स्वप्न में भी दर्शन नहीं होगा। उस व्यक्ति को जिसने सकृन मनहा कृष्ण पदारविंदयो, ये जब बात कही सुखदेव गोस्वामी ने, तो तुरंत उनको, क्योंकि वे दृष्टांत कुशल है, दृष्टांत देने में कुशल है, केवल सिद्धांत ही नहीं कहते, फिर दृष्टांत भी देते, उदाहरण भी देते हैं, तो उनको एक इतिहास का स्मरण हुआ जो उन्होंने सुना था, अगस्त मुनि से सुना था। मलय पर्वत में जब अगस्त ऋषि स्वयं अपने विग्रह की आराधना अर्चना में व्यस्त थे, तो भगवान की आराधना करते करते भगवान के मतलब भगवान के चरणों को छू ही रहे थे, छूना पड़ता है, अभिषेक हो रहा है, श्रृंगार हो रहा है, तो भगवान का श्रृंगार भी सेवा भी कर रहे थे और इतिहास भी सुना रहे थे। श्रोता कौन थे? सुखदेव गोस्वामी। तो अंत में इस प्रसंग के अंत में ये बात स्वयं सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को कहते हैं, ऐसी बातें जो मैंने अगस्त ऋषि से सुनी थी उसको मैं अभी तुमको सुनाऊंगा। अत्र इस संबंध में चोदाहरंतिम इतिहासम पुरातनम दूतानां विष्णु यमयोः संवादस्तम निबोध मे। इस संबंध में मुझे एक उदाहरण स्मरण हो रहा है, इतिहास है मतलब, तो बहुत प्राचीन बहुत पुरानी बात है, जिस इतिहास में सुखदेव गोस्वामी आगे कहते हैं दूतानाम, दो प्रकार के दूतों का संवाद, विष्णु यमयोः, विष्णु दूत और यमदूत संवाद, उनका संवाद, तम निबोध हमें, उस संवाद को मुझसे ध्यान से सुनो। हां ध्यान से सुनो, ये नहीं कि राजा परीक्षित नहीं सुन रहे थे, राजा परीक्षित को कभी झपकी नहीं लगती। पूरा ध्यान है तो भी कोई महत्वपूर्ण बात है तो सुखदेव गोस्वामी समय समय सुनाओ 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 और ध्यान से सुनाओ, सुन रहे हो ना, श्रद्धा से सुनाओ। ऐसे कह के राजा परीक्षित के ध्यान को और आकर्षित, मन को और एकाग्रित करा रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। संवादस्तम निबोधमयी, आगे जब हम पढ़ेंगे तो लगेगा कि ये तो विवाद है, ये वाद विवाद है यमदूत और विष्णुदूतों के बीच में, इसको ये सुखदेव गोस्वामी संवाद ही कह रहे हैं ना, ये संवाद सम्यक प्रकार से जो संभाषण हुआ, कुछ दोनों पक्ष ने एक दूसरों से कुछ जिज्ञासाएं की और बड़े शांतिपूर्वक उसके जवाब भी दिए हैं। जब एक व्यक्ति बोल रहा है तो दूसरा बीच में नहीं बोल रहा, उनका सब जो कहना है वो कहने के बाद सुनने के बाद पुनः दूसरा व्यक्ति कुछ जिज्ञासा करता है, फिर उसका जवाब होने के बाद फिर पुनः प्रश्न पूछे जाते हैं। ये संवाद हुआ, वाद विवाद में ऐसा नहीं होता, बीच में आई उसका आधा वाक्य हुआ ही नहीं तो बीच में और कुछ कर, हम लोग विवाद करते रहते हैं लेकिन ये संवाद है। कान्यकुब्जे द्विजः कश्चित् दासीपतिरजा मिलः नाम्ना नष्ट सदाचारो दाश्चः संसर्ग दूषितः। सुखदेव गोस्वामी कान्यकुब्जे, कान्यकुब्ज नाम का एक स्थान उत्तर प्रदेश में कानपुर के पास, आज भी कन्नौज नाम का शहर है, यही कन्नौज प्राचीन काल में कान्यकुब्ज कहलाता था। कान्यकुब्जे द्विजहा, और वहां के ब्राह्मण बड़े प्रसिद्ध हुआ करते थे, कन्नौज के ब्राह्मण कन्नौजिया ऐसा भी कुछ कहते थे, कि सारस्वत ब्राह्मण है, कश्मीर के दाक्षिणात्य है, दक्षिण भारत के, इस प्रकार अलग अलग स्थान के ब्राह्मणों को अलग अलग नाम भी, उनकी ख्याति अलग अलग क्षेत्रों में। तो कन्नौज के ब्राह्मण प्रसिद्ध थे। तो कान्यकुब्जे द्विजः, एक ब्राह्मण की ये बात है, लेकिन देखिए और आगे क्या परिचय है इस द्विजः। द्विज जो दो बार जन्म लेता है, मां जन्म देती है और फिर गुरुजन पुनः कुछ मंत्रों से उनको पुनः जन्म देते हैं। संस्कारात् भवेत् द्विजः, संस्कारों से व्यक्ति द्विज बनता है, नहीं तो जन्मना जायते शूद्रः। जन्म से तो व्यक्ति शूद्र होता है या पशुवत ही होता है। जो संस्कार होते हैं, संस्कारों से संस्कारात् भवेत् द्विजः, ट्वाइस बोर्न, दूसरा जन्म लेता है व्यक्ति। तो ये द्विज, कश्चित् दासी पति रजा मिलः, ये कोई ब्राह्मण था द्विजः, लेकिन समस्या क्या, दासीपति रजामिल, उसका नाम अजामिल, कैसा अजामिल, कैसा द्विज, कैसा ब्राह्मण, दासीपति, दासी का पति बन गया। कैसी दासी, साधारण उसे वेश्यापति ही कहना चाहिए था, लेकिन तो वो दासी, वो वेश्या थी, वेश्या का पति बन गया। कैसे बना उसका इतिहास बाद में और चरित्र आगे का और आगे आएगा। यहां इतना ही समझना कि वेश्यापति, श्रील प्रभुपाद इसका अनुवाद कर, निम्न श्रेणी की स्त्री, दोनों भी कहे दासी मतलब वेश्या, वेश्या का पति या निम्न श्रेणी के स्त्री का पति वो बन गया। अजामिलः नामना नष्ट सदाचारो, तो अजामिल उसका नाम और स्वाभाविक ही, और क्या लोग अपेक्षा कर सकते हैं, जब दासी का पति बन गया तो नष्ट सदाचारो, सारे उसके सदाचार नष्ट हो गए। कोई वेश्या का संसर्ग दूषितः, दास्यः संसर्ग दूषितः, दासी के संसर्ग से, और केवल साधारण संपर्क ने, सम्यक प्रकारेण संपर्क, केवल देखा देखी ही नहीं, कोई बोल चाल ही नहीं, और भी आगे की सभी बातें। इसीलिए अंग संग, तो उसको संसर्ग दूषित, संसर्ग से दूषित हुआ, किसके, दास्या, दासी के, इसी दासी के, दासी पति रजा मिला, दासी का जो पति बना था उसी के संपर्क में आने से, संग से, सब बातचीत से, सब खान पान से, वेशभूषा से दूषित हुई आयु की 25 वर्ष तक, 25 से 50 गृहस्थ आश्रम और 50 से 75 वानप्रस्थ, और आगे कोई बचता है राम साथ है, नहीं होता है तो सन्यास वगैरह। तो इसने कोई वानप्रस्थ आश्रम वगैरह स्वीकार, जब वानप्रस्थ का समय था तो अभी अभी शादी किया उसने, जिस समय वानप्रस्थ लेना चाहिए था उस वक्त शुभ मंगल सावधान हो गया, सावधान तो हुआ ही नहीं, केवल हम मंगल की कामना करते हैं, मांगल्य अमंगल, लेकिन सावधान जो कहा जाता है, सावधान, इस पर ध्यान ही नहीं जाता। एक व्यक्ति का ध्यान गया, वे थे रामदास स्वामी, ऐसे सावध हो गए भागे दौड़े, सावधान, जो बंधन में फंस रहे सावधान, उसने गार्ड छोड़ दी बीच में ही, मंत्र बोले जा रहे सावधान सावधान, तो सावध होके अब और एक एक ही मंत्र बचा था तो उन्होंने छोड़ दी गांठ और दौड़ पड़े, सभी 12 सभी लोग पीछे दौड़ रहे थे, किसी के हाथ नहीं लगे, आगे चल के बहुत बड़े स्वामी हो गए। तो इसने कहा ये तो हुआ वानप्रस्थ अभी नहीं, कुछ नहीं चल रहा है इसका, अभी कुछ समय पहले हमारे एक भक्त के पिताजी का विवाह हुआ, अमेरिका के हमारे भक्त, तो हमने पूछा हाउ ओल्ड इज योर फादर, क्या उम्र था, 75 years, 75 साल की उम्र है, और उस पिताजी ने मैरिज का इनविटेशन कार्ड अपने पुत्र को भेजा, मेरा विवाह हो रहा है बेटा आओ, बेटा है ब्रह्मचारी अमेरिकन बेटा भी ब्रह्मचारी है, उसको पिताजी ने जिसकी 75 साल की उम्र में अभी विवाह हो रहा है, कुछ पांचवा या छठा विवाह था उसका, फिफ्थ सिक्स्थ मैरिज ऐसा कुछ, अब ये तो कुछ भी नहीं है, दर्जन तक पहुंच जाते हैं या 10-20, तो 2-4 तो ऐसे कॉमन है, हम तो हंस रहे हैं, लेकिन अगर हम नकल हमारी जारी रहेगी विदेश की तो आने वाले 10-20-50-100 वर्षों में हमारी स्थिति वही होगी जो आज विदेश में है, आपको पता नहीं है, कोई बताता ही नहीं है, पता केवल वहां की चमक दमक ही हम देखते हैं बस, लेकिन ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती, कौन बता, प्रभुपाद ही एक ऐसे भारत के रत्न हुए, इस भूमि के सुपुत्र हुए जिन्होंने सावधान किया, भारतवासियों सावधान, भारतीय बनो, केवल पासपोर्ट है इंडियन पासपोर्ट है इसीलिए हम लोग भारतीय हैं, ऐसा क्लेम हम नहीं कर सकते, भारतीयता भा में जो रथ है, भा मतलब ज्योति प्रकाश ज्ञान में जो रथ है तल्लीन है वे है भारतीय, वो ज्योति कहां से ज्योति प्राप्त करेंगे, कलौ नष्ट दृशाम ईशाम, कलयुग ने तो हमारी दृष्टि को नष्ट कर दिया, इसीलिए भगवान ने क्या व्यवस्था की है, पुराण अर्क उदित, भगवान ने एक प्रकाश सूर्य को उदित किया, पुराण अर्क उदित, और वो पुराण श्रीमद् भागवत पुराण है, श्रीमद् भागवत पुराण को भगवान ने हम मनुष्यों को दिया है एक सूर्य के तरह, जब सूर्य उगता है तब दिखाई देता है, तो भागवत का जो प्रकाश है गीता भागवत के प्रकाश में हम लोग बच सकते हैं। जब अंधेरा तो पता ही नहीं चलता कहाँ गड्ढा है, कहाँ क्या है, कहाँ रास्ता है, कहाँ खाई है, कहाँ ब्रिज है, कहाँ नदी है, कहाँ सांप है, कहाँ कांटे हैं, अंधेरे में कुछ पता नहीं चलता है। तो मैं टॉर्च लाइट ऑफ नॉलेज, इसी को सुखदेव गोस्वामी कहे थे, विपश्चितम विमर्शनम प्रायश्चितम। ये ज्ञान गीता भागवत का जो ज्ञान है ये प्रायश्चित, फिर रक्षा हो। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद को हमें हम सदैव ऋणी रहेंगे। जिनकी कृपा से अब विदेश में लोग गृहस्थ आश्रम को स्वीकार कर रहे हैं, कई ब्रह्मचारी सन्यासी तो है ही, लेकिन गृहस्थ आश्रम, न तो हम कहते हैं, न तो शास्त्र कहता है, न तो भगवान कहते कि सभी सन्यासी बनो, नहीं, गृहस्थ बनो, लेकिन गृहस्थ आश्रम, अपने घर का आश्रम बना दो। ये बातें सीखनी है। जब अजामिल ने ये किया वो किया, सब उसकी जो लीला, उसका जो इसे सीखना क्या, नहीं नहीं ऐसा नहीं करना है। ये तो अजामिल मतलब माया से मिला हुआ, अजामिल मतलब कौन व्यक्ति, वो जो माया से मिला हुआ है, उसके चरित्र को हम यहां देख रहे हैं जो सही नहीं है। ये आदर्श नहीं है, ये निंदनीय है, प्रशंसनीय नहीं है। वह गृह ठाकुर हमारे भक्ति विनोद ठाकुर, हाँ ठीक है, आप गृहस्थ हो, ठीक है, स्वागत है, लेकिन करो क्या, गृह ठाकुर वन्य ठाकुर सदा हरि बोले ही राखो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अपने घर का आश्रम बनाओ, गृहस्थ आश्रम, हम लोगों का ब्रह्मचारी आश्रम सन्यास आश्रम है, आप भी अपना आश्रम बनाओ, घर का आश्रम गृहस्थ आश्रम। जिस घर में तुलसी हो, तुलसी के पौधे, भगवान का मंदिर, जिस भगवान को भोग लगता है, जिस घर में कई सारे चित्र हैं भगवान के दीवार पर, कई सारे ढेर के ढेर ग्रंथ है, गीता भागवत है, प्रातःकाल उठ के नमस्कार करते हैं भगवान को भोग लगाते हैं, परिवार के सदस्यों को प्रसाद खिलाते हैं, जब भी फोन आता है हाय हाय नहीं कहते, क्या कहते हैं, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, कुछ लोग बड़े हर्ष के साथ हरि बोल हरि बोल, दूसरा व्यक्ति क्या कहता है, हरे कृष्ण, एक व्यक्ति कहता है हरि बोल, दूसरा व्यक्ति क्या कहता है, हरे कृष्ण हरि बोल हरि बोल हरि बोल। वाह, तो फोन तो आते ही रहेंगे, तो हेलो हेलो के बजाय आप क्या कह सकते हैं, हरि बोल फिनिश्ड, नो टाइम, लोग समय नहीं आ, इसमें क्या अधिक कुछ अलग से समय लगता है क्या, हेलो की जगह हरे कृष्ण कहो, कुछ लोग हरि ओम भी कहते हैं, हरि ओम सही राम राम कहते हैं, खाना ही है प्रसाद खिलाओ, राधे राधे कहो सही, ब्रज के भाव में, ये हमारी संस्कृति है। तो हर रोज के जीवन में हम इसको उतार सकते हैं, इसके लिए अलग से समय की जरूरत नहीं, और इस वक्त ये हम काम कर रहे हैं, काम में है और ये धर्म है। योगः कर्मसु कौशलम्, ये योग जो है, भक्ति योग है, ये आर्ट ऑफ लिविंग, जीने की कला हमें धर्म सिखाता है। जीने की कला, जीने की राह अगर सीखना है तो गीता भागवत का अध्ययन, साधु संग, हरे कृष्ण भक्त आपको सिखाएंगे, समझाएंगे कैसे आप अपने जीवन को कृष्ण भावना भावित बना सकते हो, घर को कैसे आश्रम बना सकते हो, गृहस्थ आश्रम, घर का क्या बना सकते हो, मंदिर बना सकते हो। लेकिन आजकल हम लोग घर को क्या बनाने में लगे हैं, होम थिएटर लेटेस्ट आ गया, होम थिएटर। पहले तो थिएटर और अलग से होता था, थिएटर मतलब थिएटर, सभ्य लोग थिएटर में नहीं जाते हैं, थिएटर मतलब कुछ ऐसा ही, कुछ निम्न श्रेणी के लोगों के लिए थिएटर, सिनेमा घर। लेकिन आज हम लोग अपने घर को ही, हर घर सिनेमा घर बन रहा है, हर घर सिनेमा घर बन रहा है। तो हमारे समक्ष ये चुनौती है, चैलेंज है, ये जो भव प्रवाह है, सब बह के जा रहे हम लोग, बह रहे नदी तो उसके साथ हम लोग बह के जा रहे हैं, उसके विपरीत कार्य करने की, या अगेंस्ट द करंट, प्रवाह के विपरीत तैरने की क्षमता तब आएगी जब हम भागवत का श्रवण करेंगे। प्रवाहो परमम, प्रवाह उपरमम, प्रवाह के विपरीत कार्य मतलब आध्यात्मिक कार्य तब होगा जब श्रणवंती गायंती गृणंती अभिक्ष्णशः। ये श्रीमद् भागवत की कथा, भगवत गीता का अध्ययन हम लोग श्रणवंती सुनेंगे, गायंती गृणंती औरों को सुनाएंगे, स्मरंती नंदंती स्मरण करेंगे और उनके पास पहुंचाएंगे, ऐसे व्यक्ति क्षमता रखेंगे। जो भी संसार में इस वक्त हो रहा है, जिस प्रकार का माहौल है, जो हमें नरक की ओर ही ले जा रहा है, राजसिक और तामसिक कार्य हमसे हो रहे हैं, अधो गच्छन्ति, तामसिक कार्य मतलब अधा गच्छन, नीचे जा रहे, अधो गच्छन्ति तामसा, जघन्य गुणवृत्ति स्थ अधो गच्छन्ति तामसा, जघन्य ऐसे निंदनीय कार्य, गर्हित कर्म करने वाले तामसिक लोग कहां जाते, अधो गच्छन्ति। जब हमने कल वर्णन सुना, कहां है ये नरक, नरक ब्रह्मांड के बाहर है या पृथ्वी पर है कि और कहां है, तो सुखदेव गोस्वामी, नहीं नहीं दक्षिण में, पृथ्वी के दक्षिण दिशा में, अधा नीचे, संकेत किया कहां पर है, तो अधा गच्छन्ति वहां जाएंगे, जघन्य गुणवृत्ति स्था। और जो सत्वगुण वाले हैं, सात्विक लोग हैं, सदाचारी जो है, ऊर्ध्वम गच्छन्ति, भगवान ने स्पष्ट किया, ये हमारे मन की बातें नहीं है, यहां कोई मनोधर्म यहां चलता भी नहीं, प्रभुपाद कहने भी नहीं देते हम लोगों को, इस प्रकार का ट्रेनिंग है इस कान में, मुझे लगता है कि बात यहां नहीं चलती है, मेरा ख्याल, आप गटर में फेंक सकते हैं अपना ख्याल, ये अपने ख्याल अपने विचार नहीं होते यहां, साधु शास्त्र आचार्य ये प्रमाण है। तो नीचे जाते हैं, तमोगुनी जब हमने कहा तो इसका कोई शास्त्र कोई आधार है। या जैसे यहां सुखदेव गोस्वामी ने भी कहा, एक बार जो कोई स्मरण करता है भगवान के चरणों का, स्वप्ने भी तद्भटान।